ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज के इस 5 सितंबर के प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव भी चल रहा है और लगता है और एक महीना चलेगा। और श्री कृष्ण का जन्म भक्त के जीवन में रोज होता है कि नहीं होता है। जब भी कृष्ण के भक्त प्रेम से भगवान को पुकारते हैं रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, तो रोज जन्माष्टमी होती है। भक्तों के हृदय के आंगन में रोज जन्म लेते हैं। क्यों हम लोग चाहते हैं कि नहीं जन्म लेना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त होगा हमारा कि 5 बजे होगा, ये हम पर डिपेंड है। लेकिन भक्त लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि उन्हें रोज भगवान के साथ में संग प्राप्त होता है। ये मत समझना कि वो केवल ब्रजवासियों को प्राप्त था, जो मथुरा में थे द्वारका में थे उनको ही प्राप्त था। जो भी उनका नाम लेता है उनके लिए उनका संग प्राप्त है। प्रत्यक्ष साक्षात श्री कृष्ण भगवान से व्यक्तिगत अंग संग करने का लाभ भगवान का नाम उच्चारण करने से प्राप्त होता है। हम लोग सब लोग दीक्षा ले चुके हैं, गुरुजी से हमको अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, मंत्र प्राप्त हो चुका है। फिर भी अगर हम अंतर्मुख होकर देखेंगे तो हमारे साधना के प्रति जितना गंभीर अभी होना चाहिए अभी तक उतना नहीं है हमारा। मैं मेरे लिए कह रहा हूं। और वो भगवान नाम की साधना का गंभीर्य जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा होता है तब तक उतने उत्कट रूप से भगवान हमारे हृदय में आविर्भाव नहीं कर सकते, नहीं होगा। क्योंकि भगवान कैसे हैं, भावग्राही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी हमारे भाव को प्रतिसाद देते हो। अभी देखिए मैंने आपको अंग संग का बात किया ना, तो भगवान ने जन्म लेते ही यमुना जी को अंग संग दिया तुरंत। कैसे दिया, वसुदेव जी जा रहे हैं और यमुना जी बढ़ती 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 जा रही है ना। तो यमुना जी जब पृथ्वी माता गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास गई थी तब ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे और भगवान ने उनको वादा किया था कि हम आएंगे। और तभी भगवान ने गौलोक धाम का 84 करोड़ का हिस्सा पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना को आदेश दिया था कि आप जाओ पृथ्वी पर जाके विराजमान हो जाओ। तो कितने समय के पहले से गोवर्धन जी यमुना जी और वृंदावन का हिस्सा ये पृथ्वी पर जाकर विराजमान हो गए, है ना, एक यान की तरह, विमान की तरह ऊपर। और जब भगवान का आविर्भाव हो रहा है अभी, तो यमुना जी कितनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि ऐसे भर भर के आने लगी, उछालने लगी अनंत लहरों के साथ। तो भगवान ने यमुना जी के इस उत्सुकता को प्रतिसाद दिया। दो जगह वर्णन आता है उसका, एक जगह वर्णन आता है कि भगवान ने तुरंत अपने पांव टोकरी से बाहर निकाले, ये उनके चरण कमल जो टोकरी से बाहर निकल रहे ना, ये यमुना जी के प्रेम और क्या कहते हैं इसको, लौल्य यानी कि ईगरनेस, भगवान के साथ में भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना, ये यमुना जी का जो उत्सुकता है, तीव्र उत्कट उत्सुकता है, उसके लिए भगवान ने तुरंत अपने पैर बाहर निकाले। और एक जगह लिखा है भगवान तुरंत यमुना में कूद ही पड़े पूरा, कुछ समय के लिए खो गए थे वो। वसुदेव जी पुकार रहे, कोई लो मेरे लाला को ले लो, गिर गया है। इसमें ज्यादा समय नहीं था, लेकिन कुछ समय था बीच में ऐसे जो भगवान खो गए थे। तुरंत यमुना जी ने रास्ता दिया तो भगवान तुरंत वसुदेव ने अपने गोद में ले लिए, फिर टोकरे में डाल दिए। तो अगर यमुना जी शांत बहती, एक जगह और एक वर्णन थी, तीसरा वर्णन भी आया है, थर्ड वर्णन, वो ये है कि यमुना जी बहुत उछल रही थी, लेकिन जैसे भगवान वसुदेव को, भगवान को लेकर वसुदेव जी प्रवेश किए, यमुना जी शांत हो गए, ऐसा भी वर्णन आया। ये सब कल्प वेद के अनुसार सब सत्य है, अलग अलग समय पर अलग अलग लीला भगवान करते हैं। भगवान की कोई भी लीला वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मोनोटोनस, मतलब एक तरह की नहीं होती, ऐसा बोरिंग नहीं होती, वही वही चीजें नहीं, उसमें ही भगवान अलग प्रकार की अलग अनंत विविधता निर्माण करते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर अगर रोज भगवान को प्रकट होना है, तो हमें यमुना जी की तरह उत्सुक होना चाहिए। और केवल वैसे मन से उत्सुक नहीं, यमुना जी कैसे लहरों के साथ भी उत्सुक थी, है ना, शरीर भी तुरंत सुबह उठकर बिस्तर से भाग कर आना, ये शरीर का एक प्रमाण हो गया कि हम उत्सुक हैं बहुत। स्नान करके धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा कर आप भाग भाग के आकर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उसको भगवान फिर प्रतिसाद देते हैं। और उस व्यक्ति के लिए ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें भगवान उसके साथ में नहीं है, ये स्थिति आ जाती है। जब प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे बाहर के व्यक्ति ने, हैव यू सीन गॉड, आपने भगवान को देखा है क्या, तो जनरली आप क्या उत्तर अपेक्षित करेंगे, हाँ या ना। हाँ कहेंगे तो और चार प्रश्न हो सकते हैं, कभी देखा, किधर देखा, कैसे देखा, और ना कहेंगे तो अरे आपने भगवान को दिखाने, दूसरों को क्यों बोल रहे हैं आप। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, आई एम नेवर नॉट सीइंग कृष्णा, ऐसा कोई समय नहीं जब मैं कृष्ण को नहीं देख रहा हूं, आप तो एक बार देखने की बात कर रहे हैं, एक बार दर्शन हुआ था 50 साल पहले, वो भाव अभी भी मेरे हृदय में है। वो कह रहे हैं कि मैं कभी ऐसा समय नहीं जब मैं भगवान को नहीं दर्शन कर रहा हूं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। ऐसे अचिंत्य गुण स्वरूप वाले श्री कृष्ण भगवान का भक्त लोग हमेशा दर्शन करते रहते हैं भाव के माध्यम से। तो ये किसी भी तरह से उसको बनाना और जताना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम सब कुछ हमारे पास मिल गया, हमको वीजा मिल गया, हमको टिकट मिल गया है, लेकिन हम कभी एयरपोर्ट गए ही नहीं तो कैसे विदेश पहुंचेंगे। उसी तरह से हमको दीक्षा मिल गई है, भगवान का संग मिल गया है, धाम का परिचय हो गया है, भगवान का नाम मिल गया है, हाँ भगवान की सेवा मान मिल गई है, ये इतना भव्य अलंकार मिला है, तिलक, वैष्णव तिलक के नाम का वैष्णव वस्त्र मिला है, वैष्णव आचार संहिता के बारे में ज्ञान मिला है, उत्सव मिले हैं, प्रसाद मिला है भगवान का, भगवान के ग्रंथ मिले हैं, इतनी सारी विस्तार रूप में भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था करके रखी है। आओ भक्त बनो मेरे, आओ मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और फिर भी अगर हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो फिर भगवान और क्या कर सकते हैं। इस युग में सब कुछ छोड़कर भगवान अपने नाम के रूप में एकदम सहजता से प्रकट हो गए, सुबह में प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हाउ टू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, मनमना भव, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु। ये तीन चीज करने से आप भगवान के भक्त बन सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे। मेरे बारे में सोचो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, ये तीन चीज करने से आप मेरे भक्त बन सकते हैं। ये भगवत गीता का ऐसे कहते हैं कि सर्वोच्च श्लोक है ये, हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस। और कभी कभी कठिन रूप से बताया जाए तो ये कहा जाता है कि भक्त कौन है जो भगवान से विभक्त नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है वो, माँ प्रे कैसे विभक्त ना रहे उनसे, इतनी चीजें खींच रही हैं उनसे आसक्त होने के लिए, तो कैसे भगवान से विभक्त ना होकर भगवान के भक्त बने। लेकिन संत लोग कैसे है ना, वो बहुत कठिन चीजें बहुत आसान कर देते हैं। भगवान के बारे में विचार करो, उनको नमस्कार करो, उनका पूजन करो, बस आप भक्त बन गए। यानी कि जब संत ऐसे कहता है तो वो फॉर्मूला को भगवान को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। संत ने बोल दिया ना, क्या करें अभी। नारद मुनि ने बोल दिया ये दो व्यक्ति पेड़ बनेंगे और भगवान इसका उद्धार करेंगे, भगवान को करना पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में है, तो खंबा तोड़ के आना पड़ा उनको, तत्क्षण मेकअप करके आना पड़ा, हाफ मैन हाफ लायन। अभी बोला, ऐसे लिखा है कि भगवान का कोई प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन प्रहलाद ने उंगली दिखाया, अंगुली निर्देश किया, तो तत्क्षण उनको पूरा मेकअप करके तुरंत खंभे में हाजिर होना पड़ा। कैसे भगवान है, देखो भक्तों के अधीन रहते हैं, भक्तों के वश में रहते हैं। तो ये भगवान की जो स्मृति है, ये मनुष्य जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है, सर्वोच्च भेंट, ऐश्वर्य, अलंकार, गर्व की बात, ये सब कुछ भगवान की स्मृति है। अगर हम लोग चिरंतन भगवान का स्मृति के साथ में रह सकते हैं तो इससे बड़ी कोई भाग्य की बात नहीं। भगवान के साथ स्मृति में रहना, भगवान के स्मृति में रहना मतलब गौलोक में रहना। आप यहाँ रहकर गौलोक में रह रहे हो, गौलोक की चेतना क्या है, वो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। भौम वृंदावन जो हमारी मथुरा में है उसका क्या सार है, वही है निरंतर भगवान के ध्यान में रहना। कल क्या क्या लीला किया उसके पर आज दही मंथन करते हुए गीत गाना है उसके बारे में, कल हमारे कन्हैया ने क्या किया उसका ही आज गीत बन के सब घरों में दही मंथन होते हुए गाया जा रहा है वो गीत। सारे कंगन सारे अलंकार बज रहे हैं उसी गीत के सहारे जो कल भगवान ने क्या किया। ऐसे भगवान नित्य नवायमान नव यौवन संपन्न लीला करते रहते हैं और हमें कभी बोर नहीं होने देते। हाँ, कभी कर्णापुर जी बताते हैं आनंद वृंदावन चंपू में कि भगवान के कई सारे उपाधियां हैं, उसमें एक उपाधि अदृष्ट। अदृष्ट यानी क्या मतलब उसका, कि जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, ना किसी ने देखा है। मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम कह रहे हैं कि भक्त लोग सदैव भगवान को देखते रहते हैं, और कभी कर्णापुर जी कह रहे हैं कि उनका दर्शन जो आज हो रहा है वो किसी ने नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि भगवान कभी भी अपना सौंदर्य भी रिपीट नहीं करते। आज जो आप देख रहे हैं वो आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो आज का फ्रेश सौंदर्य है। इस रूप से वो अदृष्ट है जिनको किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसे हमारे भगवान है, उनके नाम में भी वही रुचि है जो कल रुचि थी, वो आज आपको बोर नहीं होगा। लेकिन 50 साल से हम लोग वो जप कर रहे हैं एक ही मंत्र का, तो कभी बोलते हैं क्या महाराज अभी मंत्र चेंज करो, अभी कितना दिन हो गया उसको, वही जब जब करके थक गए हम लोग, कोई रस ही नहीं आ रहा है उसके अंदर, कोई गन्ना नहीं है वो कि चूस ले तो रस खत्म हो गया उसके अंदर। वो अनंत रस संपन्न रस राज है वो, उसी नाम के अंदर से आपको अनंत रूप अनंत काल तक, जब तक काल रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, निर्माण रहेगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, आत्मा रहेगी, परमात्मा रहेगा, तब तक ये रस चलता ही रहेगा भगवान के नाम। तो इस भाव को स्वीकार करने का प्रयास करना ही जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का उत्सव क्यों मनाते हैं हम, केवल मनोरंजन के लिए नहीं मनाते, बहुत सारा वैरायटी का भोग मिलेगा जो कभी देखा भी नहीं सोचा भी नहीं, ऐसा ऐसा उधर आइटम रहते हैं भगवान के सामने। हम लोग सोचते रहते कैसे बनाते हैं, क्या है क्या ये, ऐसे अद्भुत आइटम्स हर मंदिर में अलग अलग रूप में दिखते हैं, केवल उसको पाने के लिए नहीं जन्माष्टमी मनाते। वो तो सब भगवान ऐसा बोनस में दे देते हैं। लेकिन सही जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का अर्थ यह है कि हम भगवान की चेतना को कैसे और उत्कट और कैसे और तीव्र करें, उसके लिए जन्माष्टमी उत्सव, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है मन की कि जन्माष्टमी आ रही है, मुझे कैसे अपने आत्मा को उसके लिए मोल्ड करना है, कैसे मेरे आत्मा के पात्र को विस्तारित करना है कि मैं उनकी अधिक अधिक कृपा मेरे पात्र में भर लूं, इसके द्वारा मैं उनको याद कर सकूं, कभी भूल नहीं जाऊं। तो उसमें एक प्रधान कार्य हम करते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर याद करना है, मुझे अभी अब्दुल कलाम जी को याद करना है, तो याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम बोलेंगे तो हमको याद आएगा। अटल बिहारी जी वाजपेयी चले गए अभी, तो लोग उनको याद कर रहे कि उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, हमारे बचपन में हमारे नाके पर आए के उन्होंने भाषण दिया था जब मैं छोटा सा था, तो वो जब याद करते तो उनकी कहानी याद करने से उनकी याद आती है ना। और कहानी ऐसा माध्यम है कि जैसे कहानी सुनते हैं तो बड़ी तीव्रता से उस व्यक्ति की याद आती है हमको, बड़ी तीव्रता से, मेरी दादी थी वो बचपन में ऐसे ऐसे किया करती थी, तुरंत एकदम उत्कट तरीके से याद आती है उनकी। और भगवान का लीला कैसा है, भगवान की कहानी कैसी है, बहुत हृदय है, हृदय यानी कि हृदय को छूने वाली है, हृदय को प्रभावित करने वाली है, भाव विभोर करने वाली है ना, इसको क्या कहते हैं, ओवरवेलमिंग। भगवान की कथा ऐसी है कि वो हमको हृदय को ऐसा भर देती है, फ्लड कर देती है, जैसे यमुना जी बह रही है एकदम जोरदार, तो भगवान के आने के आना खबर से ऐसे उछाल रही है वो। यमुना जी का मुझे और एक याद आती है, जब कृष्ण का अंतर्धान हुआ ना, तब सब पत्नियां भगवान के रोते रोते वृंदावन में आई थी भगवान के इच्छा के और आदेश के अनुसार, योजना के अनुसार, तभी भी यमुना जी उछाल रही थी, तो सब रोते हुए रानियां पूछती है कि अरे आप तो हमारी क्या कहते हैं सौतन हो ना, हमारी भी एक को वाइफ हो भगवान की, 16108 में आपका भी नंबर है, तो हम सब रो रहे हैं आप कैसे उछल रहे हो आनंद से इतना, तो वो भी एक विचित्र बात है, प्रेम वैचित्र्य। वो कहती है कि हम ब्रजवासिनी हैं, भगवान की पत्नी जरूर है लेकिन ब्रजवासिनी है, और ब्रजवासिनी यानी राधा रानी के संग में रहते हैं हम, और राधा रानी के संग में रहने से विरह और मिलन ये दोनों एक बराबर सा होता है, और एक तरह से विरह का अनुभव नहीं होता, एक तरह से बहुत विरह का अनुभव भी होता है, सब साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रज में कोई दुख का काम नहीं कुछ भी, सब लोग रो रहे हैं भगवान के ना होने से, लेकिन अंदर एकदम अति उत्कट आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो यमुना जी भगवान के जन्म के समय भी उछाल रही है और भगवान अंतर्धान होने के बाद भी उछाल रही है, वो उछल रही है, क्या कारण है उसका, ये है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम, ओवरवेलमिंग इफेक्ट है उसका। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज प्रभात जागृति में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव को एक्सटेंड करें, कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल कंटिन्यूज फेस्टिविटी। तो आप सब जानते हैं कि कार्तिक महीने के बलि प्रतिपदा का दिन होता है ना, एक होता है नरक चतुर्दशी, एक होती है अमावस्या और एक होती है बलि प्रतिपदा। उस दिन नंद बाबा ने गोवर्धन का पूजन किया भगवान के आदेश के अनुसार, उस दिन नंद बाबा ने इंद्र की पूजा करने का प्रयोजन किया था आयोजन, लेकिन कृष्ण ने उसको चेंज कर दिया और उसको गोवर्धन पूजा में बदल दिया, और उसी दिन सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा पूरे विश्व में भगवान के नेतृत्व में की गई, वो हो गई प्रतिमा प्रतिपदा। द्वितीया से नवमी तक क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, द्वितीया से नवमी तक घनघोर वर्षा हुई और द्वितीया को ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया, ये भागवतम में दिया है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और 7 दिन 7 रात तक लगातार भगवान उसको उठाए रहे और आनंद होता रहा। देखो क्या हम सोचते ना, इंद्र क्या सोच रहे हैं, ऐसे वर्षा कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा ब्रज को, मराठी के मन क्या बोलते हैं, होता था नवता करूं डाकतो, जो है वो नहीं कर दूंगा उसको, मैं ना के बराबर कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, क्या समझते हैं ब्रजवासी लोग, एक नटखट बालक के ऐसी क्या कहते हैं तर्क शून्य बातों को सुनकर इतनी बड़ी प्रथा मेरी पूजा का खंड कर रहे हैं, दिखा दूंगा मैं क्या कर रहे हैं वो लोग, ऐसा सोच कर रहे हो, इंद्र की भावना है ना वो, अपने मूड में वो क्या करें लेकिन भगवान ऐसा चीज पैदा करते हैं, ऐसी अचिंत्य अकल्पनीय अविश्वसनीय इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे घटना को बदल देते हैं कि क्या हो रहा है, अति आनंद अति आनंद अति अति आनंद का वर्षा हो रहा है उधर। एक बार तो क्या होता है कि एक साथ में एक रस के लोग साथ में रहते हैं, है ना, दिन का समय है तो ग्वाल बाल गौचारण के रस में रहते हैं, एक ही व्यक्ति मतलब एक प्रकार के व्यक्ति साथ में है सब एक भाव के, फिर शाम होती है तो ये भाव के लोग चले जाते हैं और दूसरे भाव के लोग आ जाते हैं, कौन है वो गोपियां, फिर घर में जाते हैं तो फिर वात्सल्य भाव वाले लोग आ जाते हैं, वात्सल्य शुरू होता है। लेकिन गोवर्धन की लीला में देखो सारे रस के सारे भक्त लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हाँ इट्स अ बिग फीस्ट, रोटी भी है चावल भी है दाल भी है मिष्ठान भी है पकौड़ा भी है हर चीज का है, हर पेय है, हर पोरिज है, लिक्विड है सॉलिड है, क्या चाहिए आपको, हर प्रकार का आनंद है उसके अंदर, सब शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य अति माधुर्य सब प्रकार के लोग खड़े हैं उधर, एक साथ में ऐसा विशिष्ट लीलाओं का आदान प्रदान हो रहा है सारी रसों का, कितने भगवान कुशल है, एक तरफ से वो भयंकर कष्ट की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है, एक तरफ से अति उत्कट कभी नहीं ऐसा आनंद प्रकट हो रहा है, 7 दिन 7 रात ना ब्रजवासी लोग सोए ना कुछ खाया ना कुछ लघु शंका का ब्रेक लिया ना किसी को नींद आई ना कोई कह रहा है भगवान बस हो गया अभी घर भी जाना है कितने दिन हो गए कितने दिन में खड़ा रहना है यहाँ पर, कोई ऐसा वार्तालाप नहीं दिखेगा आपको, आप भागवतम पढ़िए शायद सुखदेव महाराज जल्दी जल्दी में होंगे तो लिखा नहीं होगा, तो आप कवि कर्णापुर को पढ़िए आप गोपाल चंपू को पढ़िए आप आनंद वृंदावन चंपू को पढ़िए सब जगह इसका वर्णन है, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा वर्णन नहीं है कि ग्वाल बाल बढ़ रहे भगवान बस अभी कब जाएंगे घर पे, क्यों कारण क्या है उसका, क्योंकि 7 दिन 7 रात वो भगवान का रस माधुर्य रूप माधुर्य जो है ना उनका जो दर्शन है उनका उसको नेत्रों के कप माध्यम से प्यालों से पी रहे वो सौंदर्य को प्राशन कर रहे हैं और कोई उनको भूख नहीं लग रही है, वो तुरियावस्था में पहुंच गए, वो शरीरात शरीर के परे त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच गए, शरीर का कोई गुणधर्म उनको प्रभाव नहीं कर रहा है, ना उनको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, माता को बीच में लग रहा है उसको प्यास नहीं लग रही है, वो सोच रही कृष्ण को प्यास लगी होगी भूख लगी होगी सुबह से माखन नहीं खाया उसने इसको हाथ दुखता होगा मैं उसका चेंज तो करो हाथ जरा यहाँ से यहाँ करो राइट में पकड़ो थोड़ा मैं मसाज कर दूँ लेफ्ट हैंड को फिर आप लेफ्ट हैंड में दोबारा पकड़ना, ऐसे दूसरों को मन में लग रहा है कि भगवान शायद थक गए होंगे, ग्वाल बालों को लग रहा है शायद थक गए होंगे हम डंडा लगा देंगे उसको लेकिन ऐसी रूप माधुरी थी भगवान की। ये प्रश्न आता है ना कि कैसे 7 दिन 7 रात जगे रहे हो कुछ खाए पिए बिना, अरे कहते 700 या 7000 दिन भी खड़े रहते ना भगवान, 700 हजार और 700 उतनी रातें भी खड़े रहते तो भी ऐसे ही खड़े रहते देखते, वो बेचारे इंद्र का वाटर टैंक खाली हो गया क्या करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ का आनंद जो है असीमित है हाँ और इंद्र का टैंक लिमिटेड है तो क्या करेगा वो, भले वो बहुत ज्यादा है हमारी दृष्टि से लेकिन फिर भी है लिमिटेड, भौतिक दुनिया का सोर्स इंद्र का क्यों ना हो ब्रह्मा का क्यों ना हो वो सोर्स होता है लिमिटेड, कभी ना कभी शुरू होते हैं कभी कभी समाप्त हो जाता है, तो शुरुआत तो वो जोरदार किया था हाँ एक 6 मार रहा है एक 4 मार रहा है जोरदार एकदम गेंद में म्याऊ खत्म पानी क्या करे अभी, वो बोल रहे वर्षा हो वर्षा, बोले महाराज क्या करे पानी खत्म हो गया, बोले मैं वज्र लेके आता हूँ वज्र मार दिया फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा है भगवान का। तो यहां पर गोवर्धन के नीचे अमर्याद असीम अनंत आनंद का बौछार हो रही है और वहां पर बौछार हो रही है लिमिटेड तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया इसलिए भगवान ने कहा रुक गई बारिश अभी आप देखो जाओ, तो फिर चले गए फिर गोवर्धन को नीचे रख दिया उन्होंने, नहीं तो रखते नहीं थे वो, हो सकता है किसी और कल्प में 7000 दिन उठा के रखेंगे उनके लिए क्या नामुमकिन है ना, और वो भी ग्वाल बालों को लगा अरे अभी तो उठाया था अभी रख रहे हैं क्यों इतना जल्दी रख रहे हैं, रखो ना ऐसे रखो आनंद आ रहा है बहुत, ऐसा है ब्रज का आनंद, मतलब अति 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 दुख के घटना में भी कैसे अति अति अनक अकल्पनीय आनंद देना है, ये भगवान जानते हैं। ये ब्रज की विशेषता है। देखो कितने प्रसंग ऐसे ब्रज में जो संकट ही संकट है, उसके अंदर हर रोज संकट है। आप ग्वाल गाय चराने जाओ, एवरीडे राक्षस इज कमिंग। घर पे आ जाओ तो कोई वो शक्टासुर आ रहा है, कोई तृणावर्त आ रहा है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर ही घर में ही घुस रहा है। कहीं शांति है क्या? किधर देखो आप, अशांति एक ब्रज का एक विशेष लक्षण है। लेकिन आपने इसको सोचा है कभी? इतनी अशांति हो रही तो ब्रज को छोड़ के चले जाए, बाबा बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर, इतना रहना मुश्किल है। सबकी जड़ तो ये कृष्ण है, इसके पीछे सब आतंक हो रहा है। इसके साथ रहेंगे सारा आतंक का अनुभव हमको भी करना पड़ता है। मरने को इसको आते, तकलीफ हमको भोगनी पड़ती। कोई सोचा आज तक ऐसा? कोई बोला ऐसे, चलो मैं भी यहाँ से विदा लेता हूँ, बहुत हो गया मेरे लिए, मैं मथुरा जाके रहता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेके आता हूँ, ये कृष्ण के साथ रह के बहुत तकलीफ होती। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा। तो वो फिर नवमी के दिन उसको नीचे रखा। फिर दशमी के दिन इंद्र आए और उन्होंने भगवान का अभिषेक कराया। तो दशमी के दिन गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। गोविंद कुंड अविभाव दिवस है दशमी का दिन, गोविंद कुंड का निर्माण हुआ, बहुत सुंदर। उसी दिन ग्वाल बालों ने फिर वापस कृष्ण भगवान की अभिषेक किया अपने तरीके से। उधर भी देखिए क्या कहते हैं, हमारी दृष्टि से अनंत ऐश्वर्य के साथ में इंद्र ने भगवान का पूजन किया और अभिषेक भी किया। और ग्वाल वालों ने अपने तटपुंजी यानी कि बहुत ही मीगर एकदम छोटे से अपना क्या रिसोर्स, यहाँ वहाँ के थोड़ा पानी, थोड़ा पत्थर को दो ऐसा लगा दिया, एक ऐसा आसन बना दिया और बिठा दिया और भगवान का अभिषेक किया। तो भगवान स्वयं बताते हैं, बृहद भागवतामृत के ग्रंथ में उसका वर्णन आता है कि मुझे ग्वाल बालों ने किए हुए अभिषेक में अनंत आनंद आया, उसका एक अंश आनंद भी इंद्र के अभिषेक में नहीं आया। इंद्र ने इतना ऐश्वर्य के साथ में किया, पूरा वरुण देव का बेस्ट सिंहासन लेके आए, वायुदेव का बेस्ट छतरी लेके आए, ऐसा सब देवताओं के लोक से उनके बेस्ट वस्तुओं को लेकर वहां खड़ा कर दिया और उनके सब उपयोग करके उन्होंने भगवान को अपने बेस्ट तरीके से रिझाने का प्रयास किया। फिर भी ग्वाल बालों के सामने फेल हो गए। वो ग्वाल बालों के जितना प्रेम से उन्होंने अभिषेक किया ना, वैसा आनंद भगवान को दे नहीं सके वो। इसका बार बार भगवान प्रूफ देते हैं कि ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता मैं, आप करो अपना कोशिश, लगा दो अपना धन दौलत सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी प्रसन्नता उस ऐश्वर्य वाले सेवा में नहीं है। मैं हृदय की सेवा चाहता हूँ, भाव की सेवा चाहता हूँ, बार बार भगवान बताते हैं। दशमी हो गया, फिर सब शांत हो गया। अभी इतना बड़ा उत्सव हो गया ना, देखो आप शुरू कहाँ से किया था, इंद्र की तैयारी से, इंद्र की यज्ञ की तैयारी से, फिर चेंज होके जो भी आनंद बरसा उसके बाद में इतनी सारी घटनाओं का ये बड़ा फेस्टिवल खत्म हो गया। तो फिर नंद महाराज एकादशी का उपवास किया उन्होंने, दशमी हो गई ना, एकादशी का उपवास किया। तो कहते हैं कि यमुना जी के पास ही एक वन में रहे वो, और एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के सवेरे यमुना जी में स्नान करने गए उपवास का पारण के विधि के लिए। लेकिन वरुण देव के सैनिक जो थे वो पहरा दे रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा मुहूर्त के बाद में जो स्नान करते ना उसी को स्वीकार किया जाता है पवित्र स्नान के रूप में। सूर्यास्त के बाद में और ब्रह्मा मुहूर्त के पहले ऐसा कहते हैं, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, पवित्र नदी में। वो कोई कठोर ऐसा नियम नहीं है, लेकिन वो कर्मकांडी एक नियम है, ऐसा एक सिस्टम है उसकी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त के पहले ही वो पहुंच गए उधर और उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना कि भाई ब्रह्मा मुहूर्त हो कि नहीं। जैसे ही नदी में उतरे तो उन्होंने उसको अपराध समझा कि ये वरुण के सैनिक बोल रहे हैं कि ये नंद महाराज ने नियम का उल्लंघन किया, उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट किया, कैद किया और वरुण देव के पास ले गए। रहस्य की बात यह है, वरुण देव बाद में भगवान को बताते कि आपके दर्शन की अभिलाषा हुई इसलिए हमने ऐसा किया। अभी कैसे भगवान को बोलेंगे आ जाओ तो भगवान नहीं आ सकते, इनको ऐसे प्रसंग आ गया तो आ सकते हैं ना, अभी इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते हैं भगवान। जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, आप डॉक्टर हो, आपने बोला हाँ आऊँगा, दो दिन कैंसिल हो गया, एक दिन बोलेंगे वो पीडियाट्रिशियन है और एक दिन बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है तो वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करके आपके घर में आ सकते हैं, इमरजेंसी होगी ना। उस तरह से उन्होंने एक प्रकार का इमरजेंसी क्रिएट किया कि नंद बाबा को ही कैद कर लिया। तो नंद बाबा के साथ बहुत लोग गए थे स्नान करने के लिए। नंद बाबा जैसे उतरे पानी में तो लोग पानी में उतरने को कोशिश कर रहे। नंद बाबा पहले उतरे, नंद बाबा गायब ही हो गए एकदम। बहुत समय बीत गया, आए नहीं वापस। तो उन्होंने कृष्ण कृष्ण पुकारा, तो कृष्ण भाग भाग के आए। बोले क्या हो गया? बोले बाबा चले गए, ये देखो उनके चरणों के चिन्ह हैं, नदी में प्रवेश करते हुए चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वापस आए हुए चिन्ह नहीं दिख पड़ रहे, लगता है उनको मगरमच्छ खा गया। ऐसे बोलकर रो रहे हैं ग्वाल बाल। तुरंत भगवान ने अपना उठा के कमर को बांध लिया और छलांग लगाया, जब पानी में सीधे चले गए वरुण लोक, वरुण को मिलने के लिए। ऐसे और कब छलांग लगाया था पानी में भगवान ने? एक ही बार लगाया था क्या? अरे दिन रात लगाते थे वो पानी में छलांग, हर रोज लगाते थे। एक बार कालिया को मिलने के लिए नीचे गए और एक बार वरुण देव को मिलने नीचे गए। तो देखे तो क्या है, इतना बड़ा साम्राज्य है वरुण लोक का, वहां वरुण देव सिंहासन में बैठे हैं। भगवान जब जैसे पहुंचते हैं तुरंत सिंहासन के उतर के भाग के भगवान का दंडवत प्रणाम करते हैं। और नंद बाबा भी उनको एक जगह बांध के रखा हुआ है। भगवान देखते हैं तो तुरंत नंद बाबा को रिहा कर देते हैं और तुरंत नंद बाबा वहां खड़े हैं। अभी उनको मुक्त कर दिया है और कृष्ण बालक कृष्ण को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पंच पकवान खिलाते हैं, अनेक स्तुति पर वचन बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तारीफ करते हैं, गौरव करते हैं भगवान का। और कहते हैं कि हमारे सैनिक मूर्ख लोग हैं, उन्होंने गलती से आपके पिताजी को कैद कर लिया, मैं बड़ी बड़ी माफी चाहता हूँ। बार बार दंडवत प्रणाम किया, बार बार क्या कहते हैं ना, पश्चाताप व्यक्त किया कि आई एम सॉरी, ये हमारे हाल से मिस्टेक हो गया, ये जानबूझ के नहीं हुआ। बाद में बोलते कि आपके दर्शन की अभिलाषा भी थी। तो बहुत सारे गिफ्ट देकर फिर नंद बाबा का सत्कार किया, उनका भी गौरव किया। और विशेष बात क्या है कि नंद बाबा अपने पुत्र का सिंहासन पे बिठाकर जो सत्कार हो रहा है वो सब आंखों से देख रहे हैं। बोलते इनके सैनिक इतने पावरफुल थे, मुझे अरेस्ट करके लेके गए और उनके बॉस के पास मुझे लेके गए और उन्हें मुझे अरेस्ट करके रखा, और वो जो वरुण देव है बॉस उनके, वो मेरे बालक की पूजा कर रहे हैं, क्या ठाट है मेरे बालक के, वाह क्या बात है। लेकिन माधुर्य रस का इतना प्रभाव है उनके ऊपर, माधुर्य वात्सल्य का, ये नहीं लग रहा है उनको कि वरुण देव तो देवता है, वो देवता किसकी पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, परम भगवान की, तो मेरा बालक विष्णु हो सकता है, ये मन में विचार नहीं आ रहा है उनको। उनको ऐसा लग रहा है, हमारे आचार्य बताते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बालक ना बहुत अद्भुत है, इसलिए वो प्रसन्न हो गया बालक को देखकर। माय चाइल्ड इज वंडरफुल, दैट्स व्हाई वरुण देव इज वेरी इंप्रेस्ड विद हिम, ही इज रियली वंडरफुल, ऐसा लग रहा है। ये नहीं लग रहा है कि वो भगवान है। अगर वहां कोई और भक्त होते तो सोचते कि हाँ ये तो वास्तव में भगवान है। लेकिन ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है ब्रज में, लेकिन ग्वाल बाल या मधु माता यशोदा या नंद महाराज या कोई, लगता है किसी को लगता नहीं कि ये भगवान है ना, हमारा बालक बहुत अद्भुत है, कोई ऋषि होगा शायद, कोई ऐसा कोई देवता का अवतार होगा शायद, कोई तपस्वी होगा, कोई सिद्ध महात्मा होगा। ऐसे चर्चा करते हैं, गोवर्धन को उठाया तो वो चर्चा कर रहे हैं चौरासे खंभा में बैठ कर कि बालक बहुत सिद्ध महात्मा होगा, कोई पराक्रमी बालक होगा, ये बहुत पुराने जन्म का पराक्रमी होगा। लेकिन ये बात छूती नहीं मन में बार बार कभी भी, ये भगवान होगा। तो वो पिताजी को फिर नए वस्त्र देते हैं, कृष्ण भगवान को नए वस्त्र देते हैं, वो पहनते हैं और वहां से फिर बड़े धूमधाम से विदा हो जाते हैं। और फिर वो आते हैं बाहर, तो रास्ता में भगवान कृष्ण नंद महाराज को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। चल ही रहे तो कुछ होना चाहिए, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते, वाह क्या बढ़िया दर्शन हुआ। फिर भी उनको नहीं लग रहा है कि हमारा कृष्ण जो है वो वही विष्णु है जो मैंने देखा उधर। फिर वो बाहर आए, तो बाहर सब लोग बाल बाल चिंता में खड़े हैं ना, सब लोग ब्रजवासी लोग, क्या आ गए बाबा, चलो बच गए। तो वो बाबा जो है ना नंद बाबा, वो सबको उतरते ही वो इज एक्साइटेड ना, अभी एक तो वरुण लोक में क्या हुआ और ऊपर से वैकुंठ से दर्शन किया, तो एकदम एक्साइट हो गया, सब बता रहे कि क्या क्या दर्शन किया। तो ग्वाल बाल नाराज हो गए बहुत, तो हमने क्या पाप किया है, खाली बाबा को दिखाते हो, हमने हमारा अधिकार नहीं, हमको वैकुंठ दिखाओ। अच्छा और एक बात ध्यान रखना विशेष, वो पानी में से बाहर आ रहे हैं लेकिन दोनों के वस्त्र बिल्कुल सूखे, नो वाटर, कंप्लीट ड्राई। सबको आश्चर्य हो रहा है, ऐसे कैसे जल में से आ रहे और सूखे कैसे हो रहे हैं। उतने में नंद महाराज बताना शुरू कर देते कि हम वैकुंठ देख के आए सब। तो सब ग्वाल बाल और बड़े ग्वाल बाल जो होते ना, बुजुर्ग वाले और बच्चे वाले, सब जिद करते हैं हमको वैकुंठ दिखाओ। तो ले क्या करोगे वैकुंठ जाके, मजा नहीं आएगा आपको उधर। नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा कैसे, वो उनको दिखाया, हमको दिखाना चाहिए। तो ठीक है, आँख बंद करो। तो आँख खोलो तो क्या देखते हैं, एकदम वैकुंठ में चकाचौन सब जगह, रत्न माणिक मणि कंचन सब भरा हुआ है सब जगह पे, हर एक सिड्डी हर एक भूमि का हर एक कण चिंतामणि से भरा हुआ है। क्या ठाट है, क्या ऐश्वर्य है, क्या चकाचौन प्रकाश है सब जगह पर। इतने बड़े वैकुंठ के सैनिक खड़े हैं, बहुत चार भुजा वाले चमकदार, अनंत सूर्य जैसा प्रकाश है उनके शरीर में। ऐसा सिचुएशन है ना, ऐसा रॉयल सिचुएशन है। और कहीं दूर ऊंचाई पे एक रत्न का सिंहासन है, वहां पर कान्हा बैठा है राधा रानी को लेकर, मतलब अभी विष्णु लक्ष्मी बनकर बैठा दूर एकदम। तो ये लोग जाना चाहते उधर, तो वैकुंठ के सैनिक बोलते हैं देखो यहीं प्रणाम करो, यहीं खड़े रहो, आगे जाने का काम नहीं। उनका ठाट इतना रहता है ना, तो ये कुछ बोल नहीं पाते, बाप रे। तो दंडवत करते हैं और आगे जाना चाहते हैं, उनको रोक लेते हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं। एक एक सब लोग आते हैं, भागना जाते हैं, सब लोग को खड़ा कर देते हैं। तो जरा उखड़ जाते ग्वाल बाल। वैकुंठ के सैनिक को बोलते ये कैसा देवता देवता है तुम्हारा वैकुंठ का, देखो हमारा वृंदावन का देवता देखो, जब चाहे मिल सकते हैं, गले मिल सकते हैं, चुम्मा ले सकते हैं, उसका मुंह का निकाल के खा सकते हैं, उनके मुंह में डाल सकते हैं अपने मुंह का निकाल के। ये देवता कैसा है तुम्हारा, जाने दो हमको, मिलने दो, अरे हमारा यार है वो। बोले नहीं नहीं, इधर खड़े रहो, वहां जाने का कोई काम नहीं। तो ना कुछ ही क्षण में वैकुंठ में वो बोर हो जाते हैं। देखो आप सोचो इसके बारे में, वृंदावन धाम में वो हमेशा क्या कहते हैं उसको, रंजित, यानी हमेशा मनोरंजन की ही अवस्था में रहते, ऑलवेज एंजॉइंग, नेवर बोर्ड। वो कुछ ही क्षण में वैकुंठ में बोर हो जाते, कुछ ही क्षण में। जो सब चीजें हम दुनिया में देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पर प्रचुर अनंत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो ब्रजवासियों को बिल्कुल इतना सा भी मोहित नहीं कर रही। उनको तो कृष्ण चाहिए, उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे कन्हैया कहाँ ले आयो हमको, बोर हो गए हम यहां पर, चलो लौट चलना है। तो अचानक अपने आप को वापस वृंदावन धाम में पाते, तो वहां तुरंत वहां कृष्ण सामने खड़े होते, तुरंत गले लगाते, अरे हमारे कन्हैया, अरे लाला नंद लाला। समझ में आया आपको, ऐसे ब्रजवासी वैकुंठ का ऐश्वर्य भी उनको मोहित नहीं कर सकता है, इतना प्रेम है उनके मन में। और भगवान भी उनके सामने वैकुंठ का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं करना चाहते, ये लोग ही जिद करते बीच बीच में। एक बार वो कामे वन में वो राजा रानी और सब लोग जिद करते हैं, अरे आप तो राम बने थे, हमने सुना था, उनको दर्शन दो। बोले नहीं नहीं, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, ग्वाल बाल हूँ, मैं कहाँ का राम, तो भगवान है वो, क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताना, हम बात नहीं करेंगे आपसे। तो फिर वो उनको पूरा प्रभु राम का दर्शन ऐश्वर्य संपन्न दिखाना पड़ता है, फिर लंका क्रिएट करते हैं, वहाँ पर रामेश्वर निर्माण करते हैं, सेतु बंध प्रकट करते हैं, सागर निर्माण होता है। कामेवन में आज भी है दर्शन, रामेश्वर सेतु बंध, तो मजबूर करते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर वही खुद बोर हो जाते हैं, फिर वापस उनको अपना ही कृष्ण चाहिए। और भगवान भी बड़े कैसे ना, भगवान भी वो हर जगह ऐश्वर्य 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 के रूप में रहकर भगवान भी उबक जाते हैं, ब्रज में आना चाहते हैं। सिंपल रहो, आराम से, चप्पल मत पहनो, कुछ मत करो, अलंकार मत पहनो, रूखी सूखी खाओ, चुरा कर मक्खन खाओ, मतलब तो उसमें जो आनंद है, वैकुंठ के भी ऐश्वर्य में आनंद नहीं है। वैकुंठ के आनंद को छोड़कर यहाँ पर चुरा कर खास छाछ पीने को आते हैं वो। देखो आनंद ज्यादा होगा इसलिए आते ना, नहीं तो वो चोर कहलाने के बाद चोर की उपाधि स्वीकार करके, निंदा स्वीकार करके दुनिया भर आज वो बोल रहे माखन चोर माखन चोर माखन चोर, रणछोड़ रणछोड़ रणछोड़। मंजूर है उनको, कोई बात नहीं, ऐसे वो कु उपाधि भी चलेगा, उनको खराब नाम भी चलेगा, उसको स्वीकार करके भी वो आते हैं, आनंद होगा इसलिए आते ना उसके अंदर। भगवान को भी आनंद चाहिए, तो कहते हैं ब्रज भूमि और ब्रजवासी यही भगवान को सच्चा आनंद दे सकते हैं, बाकी जगह वो खुद आनंद देते हैं लोगों को। और आनंद लेने के लिए गोपाल चंपू में श्लोक है सुंदर, एक जब वृंदावन में नंद बाबा प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा अपना नंदगांव क्या नहीं कहते उसको, गोकुल रावल को छोड़कर जब ब्रज में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक श्लोक आता है वहां पर कि कैसे ये वृंदावन, भागवत का श्लोक है, कैसे ये वृंदावन कृष्ण बलराम दोनों को आनंद देने वाला है, उनके आनंद की वृद्धि करने वाला है, ये जमुना जी, ये वृंदावन, ये गोवर्धन कैसे कृष्ण बलराम को स्वयं को आनंद देने वाले हैं, जो दुनिया को आनंद देते हैं, कैसे ये वृंदावन धाम गोवर्धन जमुना उसको ही आनंद देते हैं। तैसी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला जो स्वयं भगवान को भी आनंद देती है और सारे भक्तगण भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान ने ब्रज में उसको प्रकट किया। तो अभी समय समाप्त हो रहा है, तो इसी भगवान के चिंतन में हमें अपना सारा कार्य करना चाहिए, दिन बिताना चाहिए, बैकग्राउंड में ये सब चलते रहना चाहिए, हाँ, हृदय के स्तर पर ये सब चलते रहना चाहिए, दिमाग के स्तर पर कर्तव्य का काम होते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।